From the Conference Center at Temple
Salt Lake City ke Temple Square se Conference Center se Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ki 179वें annual general conference hai jiske vector general authorities aur girja ke general officers se chune gaye hain aur is session ke liye Sangeet Bountiful aur Farmington ke stake ke combined choir dwara prarthna kiya jayega. इस ब्रॉडकास्ट को बॉनरवेल कम्युनिकेशन द्वारा एक सामाजिक सेवा के रूप में प्रदान किया जा रहा है बिना इजाजत के इसको रिकॉर्ड या छापना मना है. हेनरी बी आयरिंग जो गिरजा की पहली प्रेजेंसी की पहले काउंसलर हैं वो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे.
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, हम आपका इस Church of Jesus Christ of Latter-day Saints की 179 semi-annual general conference के दूसरे सेशन में स्वागत करते हैं. President Thomas S. Monson, जो इस conference को नेतृत्व देते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस session को conduct करूं. हम उन सभी को नमस्कार करते हैं जो टीवी, रेडियो और इंटरनेट और सैटेलाइट प्रसारण के द्वारा इसे दुनिया भर देख रहे हैं. इस सेशन के लिए संगीत बाउंटीफुल और फार्मिंगटन यूटा के स्टेक द्वारा प्रदान किया जाएगा. माइकल हाफ के निर्देशन में लिंडा मार्गेट्स ऑर्गन बजाएंगे. क्वायर इस सभा की शुरुआत ये गाकर करेगा, लेट ज़ायन इन हर ब्यूटी राइज. प्रार्थना फिर 70 के एल्डर कार्लोस एच अमारो द्वारा दी जाएगी.
पिता परमेश्वर, अपने सर झुकाकर आपके साथ आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके आशीर्वाद के लिए. और खास करके यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो हमारे लिए उन्होंने दिया है, और जो गिरजा आपने फिर वापस लाया है जोसेफ स्मिथ के द्वारा, और जो प्रिस्टुड कीज जो आपने वापस दिलाया है कि हम आपके पास वापस आ कर रह सके हमेशा के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रेसिडेंट मुनसन के लिए जो हमारा भविष्यवक्ता है, और उनके चेलों के लिए जो हमें रास्ता दिखलाता है। हम चाहते हैं कि आप उन पर अपना आशीष सुनते रहे, कि हम उनको सुने और समझें। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके आज्ञाओं और नियमों का पालन करें, उन्हें निभाएं। और ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।
Just say,
Choir ne abhi gaye hain, know this, that every soul is free. President Thomas S. Munson ne mujhe kaha hai ki main General Authorities Area 70s aur General Auxiliary Presidencies ko sustaining vote ke liye pesh karu. Jiske baad hum quorum of the 12 apostles ke elders dinner, Dallin H. Oaks, Robert D. Hales se sunenge. Unke baad 70 ke elder Jorge F. Zabayas, फिर हमसे बोलेंगे। ये प्रस्तुत किया है, चाहता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के प्रोफेसी और भविष्यवक्ता के रूप में सस्टेन करें और हेनरी बेनियन आयरिंग को पहली प्रेसिडेंसी के पहले काउंसलर और डीटर फ्रिडरिश उगडॉर्फ को पहली प्रेसिडेंसी के दूसरे काउंसलर के रूप में सस्टेन करें जो चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए जो नहीं चाहते हैं वो भी हाथ उठा यह प्रस्तुत किया है जाता है कि हम बोएट केनेथ पैकर को कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल के प्रेसिडेंट के रूप में और बोएट के पैकर एल टॉम पेरी रसल एम नेल्सन डेलन एच ओक्स एम रसल बैलड रिचर्ड जी स्कॉट रॉबर्ट डी हेल्स जेफरी आर हॉलैंड David A. Bednar, Quentin L. Cook, T. Todd Christopherson, और Neil L. Anderson को उसके सदस्यों के रूप में सस्टेन करें जो चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए जो नहीं चाहते हैं वो हाथ उठा कर दे दिखाइए यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम पहली प्रेसिडेंसी के काउंसलर और 12 अपोस्टलों को प्रॉफेट सीयर और भविष्यवक्ताओं के रूप में सस्टेन करें तो जो चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए जो नहीं चाहते वो हाथ उठाकर दिखाइए प्रस्तुत किया जाता है कि हम 70 के पहले कोरम में से एल्डर चार्ल्स डीडीए जॉन एम मैथसन लिन एम मिकलसन और डेनिस बी न्यूएनशोएंडर को रिलीज करें उन्हें एमेरिटस जनरल अथॉरिटीज के ऑर्डर दे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम 70 के दूसरे कोरम में से एल्डर्स डगलस एल कैलिस्टर शर्ली डी क्रिस्टेंसन जेम्स एम डन डेरल विलियम डब्ल्यू डगलस शमवे और रॉबर्ट एसविट को रिलीज करें जो हमारे साथ इन भाइयों को बेहतरीन सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम दूसरे जनरल अथॉरिटीज एरिया 70s और जनरल ऑक्सिलरीज प्रेजिडेंसीज को सस्टेन करें जो चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए जो नहीं चाहते हो हाथ उठाकर दिखाइए प्रेजिडेंट मानसून मेरे अनुसार इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में सारे वोट एक तरफ डाले हैं धन्यवाद भाइयों बहनों आपके विश्वास प्रार्थनाओं और वोट के लिए अब हम खुशी से एल्डर ओक से सुनेंगे
मुझे अनुभव हुआ है कि मैं परमेश्वर के प्रेम और आज्ञा के बारे में बतलाऊं मेरा संदेश है कि परमेश्वर का आशीर्वाद उनका प्रेम दिखलाता है लेकिन कई आशीर्वाद सिर्फ उनके लिए है जो उनके आज्ञा को मानता है यह आनंद सिद्धांत है और हमें यह सिद्धांत अपने बच्चों को सिखलाना चाहिए मैं चार उदाहरण से शुरुआत करता हूं जो प्रेम और आज्ञा को उलझन में डालता है एक नौजवान बिना शादी के लिए के रह रहा था और अपने माता को पिता को बतलाया कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे और मेरे साथी को अपना लोगे ये नौजवान माता पिता को दबाव दे रहा था ये कह रहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे टुकराओगे नहीं इस उदाहरण में एक पापी व्यक्ति अपने माता पिता के कहता है कि उनका प्यार प्रभु के आज्ञा और उनके सिद्धांत से बढ़कर है अगला दो उदाहरण दुनिया की नजर की उलझन में है जो परमेश्वर की प्रेम को नहीं समझ पाते एक इंसान विश्वास नहीं करता कि टेंपल में शादी करना जरूरी है ये बोलकर कि अगर परमेश्वर सचमुच हमसे प्यार करता है तब वो पति और पत्नी को अलग नहीं करेगा एक इंसान कहता है कि उनका विश्वास नष्ट हो जाएगा अगर ये देखकर कि परमेश्वर दूसरों का पीड़ा देखकर कैसे रह सकता है अगर कहता है कि अगर वह प्रेम करता तब ऐसा नहीं होने देता इन इंसानों को का ख्याल कुछ अलग तरह का है और वो प्रभु के नियम और विश्वास नहीं नियमों को विश्वास नहीं करता। इंसान जो ऐसा सोचता है वो परमेश्वर का प्रेम और उनके नियमों को नहीं समझते। परमेश्वर का प्रेम उनके नियमों से बढ़कर नहीं है और उनके नियम कभी उनके प्रेम को कम नहीं करता। ऐसा माता पिता का प्रेम और नियम भी है। पहले परमेश्वर का प्रेम को देखो। कौन हमें यीशु के प्रेम से अलग करेगा? अपोस्टल पॉल पूछता है, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानतिये ना शक्ति ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर से के प्रेम से अलग कर सकेगा। अपोस्टल जॉन ने जो बतलाया है उसे बढ़कर और कोई कवाई नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक और अपोस्टल ने लिखा है कि परमेश्वर अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा और हम सब के लिए दे दिया। थोड़ा सोचो कि परमेश्वर पिता को कितना दुख उठाना पड़ा होगा ये देखकर कि यीशु ने हमारे पापों के लिए पीड़ा सहा, या उनका हमारे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। परमेश्वर का प्रेम उनके बच्चों के लिए एक सच्चाई है, लेकिन वह हमसे इतना प्रेम क्यों करता है और क्यों हमें इसका ज़रूरत है? इसका जवाब उनके प्रेम और नियमों के संबंध में है। कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर के प्रेम उनको बहाना देती है कि वे पाप के रास्ते में चले कि परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा। इसके विपरीत जो कोई परमेश्वर के प्लान को समझते हैं जानते हैं कि उनका नियम स्थिर या बदलता नहीं है। धर्मशास्त्र के उपदेशों को देखो। हम बाइबल में हमेशा और अभी के शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलता उन पर उनका क्रोध उठता है या उनके प्रेम को कैसे दिखलाता है। परमेश्वर का प्रेम इतना सच है कि वह चाहता है कि हम उनके नियमों को निभाएं, क्योंकि सिर्फ इन नियमों के द्वारा ही हम उनकी तरह बन सकते हैं। इस कारण परमेश्वर का क्रोध उनके प्रेम का बयान है। सभी माता पिता जानता है कि वो अपने बच्चों को प्रेम कर सकता है और उसी समय गुस्से से समझा भी सकता है कि वो पापों के रास्ते से निकल आए। परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है, इसलिए वो भी एक प्रकार का आशीर्वाद देता है जो उनके नियमों को नहीं मानता। इस दुनिया में आना एक आशीर्वाद है। एक और आशीर्वाद है कि हम भी जी उठेंगे। जैसे आदम में सब मर जाता है, यीशु में सभी जी उठेगा। और भी बहुत सारी आशीर्वाद है जो नियमों पर आधारित नहीं है। यीशु ने सिखलाया, उन्होंने सूर्य को बनाया कि वह अच्छे और बुरे दोनों के लिए उदय और बारिश दोनों को मिले। अगर हम सुने तब हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकेंगे। एक नारी जो चर्च लौट आई है उसने सैक्रमेंट मीटिंग में बतलाया,
If only we will listen, we can know of God's love and feel it, even when we are disobedient.
वह हमेशा मेरे लिए था। उन्होंने हमेशा मुझे रास्ता दिखलाया है और सुगति दी है, लेकिन मैं ही कठोर था और समझा नहीं। परमेश्वर का बढ़िया आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो उनके नियम और आज्ञा को निभाता है। उन्होंने कहा, स्वर्ग से नियम आया है और उन्हीं नियमों पर आशीर्वाद मिलता है। और जब हमें आशीर्वाद मिलता है, वह उन आज्ञाओं का पालन करने से मिलता है। यह सिद्धांत हमें सिखलाता है कि क्यों और कैसे न्याय और रहम अटोनमेंट से संतुलन होता है, या ये भी समझाता है कि क्यों परमेश्वर हमारी एजेंसी को रोकता नहीं है। एजेंसी हमारे चुनने की शक्ति है, जो गॉस्पल की प्लेन में जरूरी है। जो कुछ हम चुनते हैं, उनके परिणाम जो कुछ होता है, परमेश्वर बीच में नहीं आता, चाहे वो हत्या घायल करें। वह हमें आशीर्वाद देगा अगर हम उनके नियमों को चुनेंगे, लेकिन वह हमारे चुनने की शक्ति के बीच में कभी नहीं आता है। अगर एक इंसान यीशु की उपदेश को समझेगा, वह कभी नहीं सोचेगा कि स्वर्ग पिता और यीशु का प्रेम नियमों से बढ़कर है। इस उदाहरण को देखो, जब यीशु ने शुरुआत की, उनका उपदेश था पश्चाताप। जब उन्होंने रहम और दया दिखलाया, उन्होंने उस नारी से कहा कि जाओ और पाप ना करना। यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो हमारे स्वर्ग पिता के इच्छा के पालन करेगा। परमेश्वर का नियम और आज्ञा कभी बदलता नहीं है। अगर कोई सोचता है कि परमेश्वर या माता पिता का प्यार उनको नियमों को तोड़ने की इजाजत देता है, तब वह ना तो प्रेम समझता है और ना ही नियम। प्रभु ने यह बतलाया, जो कुछ नियम को तोड़ता है और नियम पर नहीं चलता और खुद एक नियम बनाना चाहता है और पापों में रहता है, वह नियम से पवित्र नहीं हो पाएगा, दया से भी नहीं, ना न्याय से, ना दंड से, इसलिए वह अपवित्र ही रहेगा। अभी के रेवलेशन में हम पढ़ते हैं कि सभी राज्य में नियम है, जैसे कि जो कोई सेलेस्टियल किंगडम का नियम नहीं निभा सकता, उन्हें सेलेस्टियल महिमा नहीं मिल सकती, और जो कोई टेरेस्ट्रियल किंगडम का नियम नहीं निभा सकता, उनके टेरेस्ट्रियल का महिमा नहीं मिल सकता, और जो कोई टेरेस्ट्रियल किंगडम का नियम नहीं निभा सकता, उन्हें टेलेस्टियल का महिमा नहीं मिल सकता। इस तरह जो महिमा हमें प्राप्त होगी, वो सिर्फ प्रेम से नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर के नियमों से प्राप्त होती है। अनंत जीवन सभी आशीर्वाद से बढ़कर है। माता पिता अपने बच्चों को ये सिद्धांत सिखला सकते हैं। आप अपने बच्चों को आशीर्वाद कैसे देते हो? जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है क्योंकि वह उनको उनसे प्रेम करता है, वैसे माता पिता भी अपने बच्चों को चाहत और खाना देता है, छत और खाना देता है, चाहे वो बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं या नहीं। लेकिन जैसे स्वर्ग पिता नियम अनुसार अपने बच्चों को कई और आशीर्वाद देता है, माता पिता को भी अपने बच्चों को आज्ञा अनुसार आशीर्वाद देना चाहिए। अगर बच्चे दारू या ड्रग्स लेते हैं, माता पिता एक कठिनाइयों से गुजरते हैं। क्या माता पिता उनको इस तरह की चीजें लेने देते हैं या कि उनको मना करते हैं? अगर एक युवक बिना शादी किए किसी के साथ रह रहा है, क्या माता पिता उनको स्वीकार करें या उनको अपने ध्यान से निकाल दें? ये दोनों ही गलत है। तब माता पिता क्या करें? उनको प्रभु की प्रेरणा की जरूरत है। स्वर्ग की प्रेरणा ही उनकी मदद कर सकता है कि वे अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें और उनको कैसे सिखलाएं। ये आनंद कार्य है। माता पिता को प्रभु की उपदेश को सुनना चाहिए कि वे 90 को छोड़कर उस एक भेड़ा को बचाने जाए जो खो गया है। प्रेसिडेंट मॉन्सन ने इसे प्रेम से बचाने का मिशन कहा है। यह उपदेश प्रेम की जारी रहने की मांग करता है, जिसमें प्रेम का रिश्ता झूठा हुआ है। माता पिता को यह भी याद रखना चाहिए कि जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे वह विनय भी करता है। एल्डर नेल्सन ने एक कॉन्फ्रेंस टॉक में बतलाया कि पापियों के लिए सच्चा प्रेम विरोध करने से होता है, ना तो समझौता। जब भी कोई नियम और प्रेम की शक्ति के बीच में उझलता है, वह आज्ञा को तोड़ेगा और पवित्र परिवार में संकट उत्पन्न होगी। यीशु ने बतलाया, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेगा, 3 दो से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध करेगा, माँ बेटी और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध करेगा। यह उपदेश हमें सिखलाता है कि अगर हम एकता से नियम का पालन नहीं करेंगे तब परिवार अलग होगी। चाहे हम कितने कोशिश करें कि रिश्ता ना टूटे, लेकिन ऐसा हो जाता है चाहे हम कुछ कर लें। इस कठिनाई में हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी खुशहाली में दिक्कत होगी, लेकिन हमारे प्रेम को दिक्कत नहीं पहुंचना चाहिए और हमें एकता से परमेश्वर के प्रेम और नियम को समझना चाहिए। हमें प्रेम करते रहना है और प्रार्थना जारी रखना चाहिए। मैं बयान देता हूँ इसकी सच्चाई का कि ये मसीह का सिद्धांत है जिसका मैं बयान देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बार जताता हूँ, जैसे हम भगवान के बयान आज हमने पाए हैं, मसीह उनके बेटे और पवित्र आत्मा की सीखें जो आज हमने जीते हुए प्रॉफिटों को इस कॉन्फ्रेंस में पाया है। जैसे भविष्यवाणी थी, हम उस समय में रहते हैं जो सेक्युलरिज्म का अंधकार बढ़ रहा है, भगवान में विश्वास का मजाक उड़ाया जाता है और उसे मजाक पड़ा जाता है, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से लड़ा जाता है। दुनिया भर में ये सोच पड़ रही है कि भगवान नहीं है। इन सब के बीच में यीशु मसीह के विस्थापित गिरजे के सदस्य के रूप में हम कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, स्वर्गीय अनंत पिता और उनके बेटे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान में विश्वास जरूरी ना क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि मसीह ने कहा है, क्योंकि ये जीवन अनंत है, ताकि तुम भगवान को जान सको कि सिर्फ एक सच्चा भगवान है और यीशु मसीह ने उन्हें हमारे पास भेजा है। भगवान के बिना जीवन कब्र ख़त्म हो जाएगा और जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। प्रगति सिर्फ कुछ देर के लिए होगी और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कोई सही गलत नहीं होगा, कोई आत्मिक जिम्मेदारी नहीं होगी एक दूसरे की जिम्मेदारी देखने के लिए। भगवान के बिना कोई मृत्यु नहीं होगी और कोई अनंत जीवन नहीं होगा। अगर तुम या कोई दूसरा जिसे तुम प्यार करते हो वो जीवन में अर्थ को ढूंढ रहे हैं, तो ये भगवान मैं कहता हूँ कि तुम्हें एक दोस्त के रूप में अपना बयान देता हूँ कि भगवान जीते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, मैं अपने आप के लिए इसे कैसे जान सकता हूँ। गिरजे के विश्वासी सदस्यों के रूप में हम जानते हैं कि वो जीते हैं, क्योंकि हमने जीते हुए प्रॉफिटों पुराने प्रॉफिटों के बयानों से सीखा है, और हम जानते हैं कि इन प्रॉफिटों के बयान सत्य हैं, और उनके बयान जिन्हें होली स्क्रिप्चरों में लिखा गया है, हम जानते हैं कि भगवान ने आदमी और औरत को बनाए अपनी खुद की झलक में। कुछ लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि हम भगवान के जैसे दिखते हैं। एक मुख्य धार्मिक व्यक्ति ने यह भी किया है कि भगवान को मनुष्य के रूप में सोचना बहुत बड़ा पाप है, पर भगवान ने खुद कहा है हमें आदमी को हमारी झलक में बनाया है। इन शब्दों का इस्तेमाल हम और हमारे स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं कि भगवान इस अकेले निर्माता नहीं था। स्क्रिप्चरों में वो समझाते हैं बाय ओनली बिगॉटन सन आई क्रिएटेड दीज थिंग्स। इस प्रकार भगवान और यीशु मसीह ने इस धरती को बनाया और हमें भी। वो एक दूसरे से अलग हैं जैसे कोई एक पिता और बेटा होता है। इस वजह से हिब्रू में जो भगवान का नाम एलोहिम है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। न्यू टेस्टामेंट से हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास में एक शरीर था। वो एक जगह ही में खड़े हुए, और अपोस्टल स्टीफन ने लिखा है, Behold, I see the heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God. हम जानते हैं कि भगवान के पास में एक आवाज़ है, जैसे जेनेसिस और बुक ऑफ मोसेस में लिखा गया है। एडम और ईव ने भगवान की आवाज़ को सुना जैसे वो बगीचे में चल रहे थे। हम जानते हैं कि भगवान के पास में एक चेहरा है, कि वो खड़ा होता है और वो बात करता है। प्रॉफिट इनक ने कहा है, आई सॉ द लॉर्ड, और मैंने अब मेरे पैर के सामने वो खड़े थे, उन्होंने मेरे से बात करी जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के साथ में बात करता है। हम जानते हैं कि भगवान के पास में एक शरीर है जो हमारे जैसा है, और प्रॉफिट ईथर जो बुक ऑफ मोरमन में लिखो में पढ़ते हैं, And the veil was taken from the eyes of the brother of Jared, and he saw the finger of the Lord. It was the finger of the man, like unto a flesh and bird. बाद में ईथर को खुद को अपने आप को बताया, Behold this bodily, behold ye now behold, this body of my spirit, and I will appear unto my people in the flesh. हम जानते हैं कि भगवान के पास में हमारे लिए भावनाएं हैं। Moses ne likha hai, and it came to pass that the God of heaven looked upon the residue of the people, and he wept. Aur hum jante hain ki Bhagwan aur unke bete Yeshu Masih amar aur nirdosh hain. Yeshu Masih ke bare mein Prophet Joseph ne kaha likha hai ki unke aankhein aag ki tarah the, unke sar pe unke baal safed the barf ki tarah, और उनके चेहरे पर सूर्य की झलक थी, और उनकी आवाज़ में झरने की आवाज़ थी। कोई बयान जोसेफ स्मिथ के बयान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रॉफिट थे जिन्हें मसीह के गिरजे को पुनर्स्थापित करने के लिए चुना गया। इस आखिरी समय में जब गॉस्पल धरती पर जाएगा यीशु मसीह के वापस आने से पहले, सभी अपोस्टल जिन्होंने अपने भगवान के काम को अपने काम में शुरू करा, जो उसमें कोई एक साफ और शक्तिशाली प्रोफेटिक अनुभव दिया गया ताकि वो मसीह के दूसरी बार आने के लिए दुनिया को तैयार कर सकें। एक 14 साल के बच्चे के रूप में उन्होंने जानना चाहा कि वो किस गिरजे को जाए, पर सोचने के बाद उन्होंने बाइबल में पढ़ा, इफ़ एनी यू लैक विजडम लेट हिम आस्क गॉड दैट गिव इट ऑल मैन लिबरली एंड इट शैल बी गिवन हिम बट लेट हिम आस्क इन फेथ नथिंग वेवरिंग। उन प्रोफेटिक शब्दों पर विश्वास करते हुए अडिंग विश्वास से जोसेफ उन झाड़ों के नीचे गया अपने घर के पास में और वहां घुटनों पर जाकर उसने प्रार्थना करी। बाद में उसने लिखा, मैंने एक पिलर ऑफ लाइट को देखा मेरे शहर के ऊपर, जब वहां पर मैंने दो व्यक्तियों को भी देखा जिन इनकी रोशनी और दिव्यता सबसे बड़ी थी और वो मेरे सामने खड़े थे हवा के अंदर। इन दोनों व्यक्तियों के पास में दो व्यक्ति थे, जोसेफ को भी पता नहीं हो सकता था कि वो बयान जो देख रहा था वो मसीह भगवान की सही प्रकृति का। पर उसने बाद में लिखा, One of them spake unto me, calling me by name, pointing to the other, This is my beloved son, hear me. उस अद्भुत अनुभव के साथ प्रॉफिट जोसेफ ने बयान दिया, भगवान के पास में एक शरीर है और हड्डियां हैं एक मनुष्य की तरह, और मसीह यीशु के पास में भी वैसा शरीर है। प्रॉफिट ने हर समय में ऐसे बयानों को दिया है इस कॉन्फ्रेंस की तरह, पर हर किसी के पास में चुनाव करने की शक्ति है। 11वें आर्टिकल ऑफ फेथ के आर्टिकल ऑफ फेथ कहता है, हम कहते हैं कि भगवान को की सेवा करने के लिए से हमारा कॉन्शियस बनता है, और उसी तरह अगर हम सभी आदमियों को वो सेवा करने के लिए बोलते हैं ताकि वो इसे जान सकें। खुद के विश्वास में हम कैसे जान सकें ये सब सच है? मैं बयान देता हूँ कि भगवान के बारे में सत्य जानने का एक ही रास्ता है, वो है पवित्र आत्मा का। वो पवित्र आत्मा त्रिमूर्ति का तीसरा भाग है और वो हमारे दिल में काम करती है ताकि वो भगवान का बयान दे सके और हमें चीज़ों को सिखा सकें। पर हमें सावधानी रखनी है ताकि हम भगवान के प्रभाव को कम नहीं करें अपने जीवन में। जब हम अपने दिल में गलत भाव या संकोच लाते हैं तो वो आत्मा हमारे साथ में नहीं हो सकते हैं। फिर हम वो बन जाते हैं जिन्हें प्रॉफिटों ने बताया है, एक नेचुरल आदमी, और उसे भगवान की आत्मा की चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि वो उसके सामने बचपने वाली बातें रखती हैं। इस प्रकार वो उन्हें जान नहीं सकता और इस प्रकार वो आत्मिक रूप से उन्हें पा नहीं सकता। वो भगवान का दुश्मन है और हमेशा वो ऐसा रहेगा जब तक वो पवित्र आत्मिक के सामने एक बच्चे के तरह सर नहीं झुकाएगा और उसके प्यार को नहीं पाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा की प्यार की भरी आवाज़ को सुन के काम नहीं करेंगे तो हम कोरिहोर की तरह हो सकते हैं, जो बुक ऑफ मोर्मन का एक एंटी क्राइस्ट था। कोरिहोर सिर्फ भगवान में विश्वास ही नहीं करता था, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता था, पर उन्होंने मसीह का भी मजाक उड़ाया और ये भी कहा कि कोई भगवान नहीं है और कोई मसीह नहीं है। कोरिहोर सिर्फ खुश नहीं था कि भगवान को ठुकराया, वो विश्वासियों को मजाक उड़ाता था और कहता था कि अल्मा भगवान की शक्ति का सबूत है। अल्मा का जवाब था जो उस समय उतना ही लायक था जो आज वह है। ध्यान से सुनो, Thou has signs enough, will ye tempt your God? Will ye say, show unto me sign, when ye have the testimony of all these brethren, and also thy holy prophets? Scriptures are laid before thee, ye and all things denote there is a God. Yea, even the earth and all things that are upon the face of it, yea, and its motion, and yea, all the planets which move in the regular form, do witness there is a supreme creator. अंत में कोरियर को एक चिन्ह दिया गया। उस चिन्ह ने उसे गूंगा कर दिया गया और कोरियर ने अपने आगे हाथ पड़ा के कहा, मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ इस चीज को भगवान की शक्ति के अलावा किसी और को नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि भगवान जीता है। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ आप किसी से प्यार करते होंगे जो जानते हैं कि भगवान जीते हैं, उनमें विश्वास है, पर उस रोशनी तुम्हारे दिल में है ताकि वो उसे तुम उसे जगा सको और बड़ा और भगवान की आत्मा से और मसीह की रोशनी जो तुम्हारे दिल में पैदा होने से है। भगवान और प्रॉफिटों की बातों को सुनो, प्रॉफिटों के बयानों पर ध्यान दो, मसीह को जानो, भगवान के बारे में जानो। वो तरीका है जिसे पहले और आज के प्रॉफिटों ने बताया है। अपने दिल में इच्छा जगाओ कि तुम जानो कि भगवान जीता है। इस इच्छा से तुम स्वर्ग की बातों के बारे में सोचने को दिल जाता है। फिर नरम दिल से हम भगवान के बुलावों के लिए तैयार हो सकते हैं जब हम स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं और फिर नम्रता से सुनने से सीखते हैं। फिर हम तैयार होंगे ताकि हम स्वर्गीय पिता से यीशु मसीह के नाम से पूछेंगे कि हम जिन चीज़ों सीखे हैं क्या वो सत्य हैं। हम में से कहीं भगवान को नहीं देखेंगे प्रॉफिट की तरह, पर एक आत्मक की छोटी सी आवाज़ के रूप में जो पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग में लाते हैं और हमें वो ज्ञान देती हैं कि भगवान जीता है। इस ज्ञान को पाना भगवान के बच्चों के इस धरती पर मुख्य कार्य है। अगर तुम भगवान में विश्वास रखना याद नहीं रखते हो या तुम उसने विश्वास करना बंद कर दिया है, तो मैं तुमको निमंत्रण देता हूँ कि तुम भगवान के बयान को बनाओ। अपने खुद के मजाक उड़ाने से मत डरो। शक्ति और शांति भगवान को जाने से आती हैं और आत्मा का जो सादगी तुम्हें मिलेगी उससे तुम्हारे काम अनंतता तक में फल देंगे। और भगवान के बयान के साथ में जब तुम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद दे सकोगे, तुम्हारे भगवान के खुद के आशीर्वाद को सबसे बड़ा उपहार नहीं मिलेगा, पर वो तुम्हारे जीवन सबसे ज़्यादा खुशी भी देगा। जैसे तुम यीशु का एक खास बयान देने वाले दोगे और जिसका मैं बयान देता हूँ कि भगवान जीते हैं, मैं जानता हूँ कि वो जीते हैं, मैं वादा करता हूँ अगर तुम और जो तुम प्यार करते हैं उससे तुम नम्रता और सच्चे दिल से पूछोगे तो तुम उन्हें भी जानोगे, तुम्हारा बयान भी आएगा और भगवान को जानने का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अनंतता के लिए होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
When the 12 disciples were
अमेरिका के देश में जब 12 चेले का बुलावा आया था, यीशु कृष्ण ने आज्ञा दी, अब तुम शुद्ध रहो जैसे मैं हूँ तुम्हारे स्वर्ग पिता है। उद्धारकर्ता ने अभी अपना लक्ष्य इस धरती पर खत्म किया था, इसलिए उन्होंने पूरी अधिकार से कहा कि वो और उनके पिता हमारे पिता की तरह अपने बनिए। इंसानी नज़र से कठिन प्रश्न है, लेकिन जब हम इससे समझ सकते इसको पा सकते हैं और हम अकेले नहीं हैं। बेहतरीन और शक्तिशाली सहायता हमारे लिए उपलब्ध है अगर हम उन्हें ढूंढेंगे। पहले हमारे दाता और प्यारे स्वर्ग पिता के हाथ हम पर है, जो हमें अपने पास हमेशा के लिए लौटने को बोला। हमारे पिता हमेशा तैयार है हमें हमारे गलतियों को माफ करने के लिए अगर हम हृदय से पश्चाताप करेंगे, और उन्होंने हम सबों को जो उनके बच्चे हैं बहुत प्यार दिया है उन्होंने उद्धारकर्ता को हमारे लिए भेजा है जो अकेले हम लोगों के लिए पश्चाताप किया। आज्ञाकारी करी बेटा की तरह पिता के कार्य को किया जो हमारे फायदे के लिए था। प्रभु ने प्रोफेसर जोसेफ स्मिथ द्वारा वाणी दी, अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे अंत तक तुमको आनंद जीवन मिलेगा, जो उपहार भगवान का सबसे उत्तम उपहार है। ये ईश्वरी वादा कठिन नहीं है हमारे लिए मिलने को। आनंद जीवन पिता और हमारे परिवार के साथ हमेशा रहेगा। क्या ये वादा हमारे लिए मूल्य होना चाहिए और हम लोगों को पूरी तरह से इस वादे को पाना चाहिए? इस अनोखे कार्य के शुरुआत में प्रभु ने कहा, जो कोई भी भगवान की सेवा में जाएगा, देखो कि तुम अपने पूरे हृदय बल दिमाग और शक्ति से सेवा करो ताकि तुम निर्दोष ना रहो आखिरी दिन में भगवान के सामने। पूरे हृदय से, पूरे बल से, पूरे दिमाग से और पूरे शक्ति से, ये कहना है कि हम पूरे जान लगा दें। प्रेसिडेंट डेविड ओ मके ने कहा, बढ़िया इनाम सिर्फ जो मेहनत करने वालों को मिलता है। ये इनाम उनको मिलता जो यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और आज्ञाकारी हैं। बलिदान सभी कुछ देता है जो उनके पास है भगवान की राज बनाने में। इस ईश्वरीय वादे जैसे हमने आनंद जीवन मिल सकती है, सिद्ध हो सकते हैं और परिवार हमेशा खुश रह सकते हैं अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके कार्य करें, आज्ञा का पालन करें इस जीवन भर में। प्रभु नहीं जानता है कि हम वो करें जो हम पा नहीं सकते। आज्ञा सिद्ध होने के लिए उनके जैसे है कि वो हमको हौसला देता है कि हम अपने आप को अच्छा बनाएं और अपने कला से खोज करें जो प्यारे स्वर्ग पिता ने हमको आशीष दी है। वो हमको जानता है, वो हमारे कमजोरों को जानता है। ये निमंत्रण सिद्ध होने की, आनंद जीवन पाने के लिए सभी मानव वंश के लिए है। इस प्रचार करने की तुरंत बाद ये जरूरी नहीं है कि आदमी अपने शक्ति से ज्यादा जोर से दौड़ लगाए। राजा बेंजामिन ने बताया कि तुम्हें 70 रहना है कि ताकि तुम इनाम जीत सको। भगवान हमसे उत्तम कार्य से ज्यादा और कुछ नहीं चाहता और नहीं उससे कम, क्योंकि वो इंसाफ नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी अव्वल सेवा भगवान और अपने पड़ोसियों को देना चाहिए। आओ हम अव्वल सेवा अपने परिवारों और अपने गिरजा के बुलावा में दे। हम अव्वल करें, कार्य करें, हर एक दिन थोड़ा सा अच्छा कार्य करें। मुक्ति और आनंद जीवन हमको नहीं मिलता अगर उद्धारकर्ता ने पश्चाताप नहीं किया होता। हमारे ऊपर उनका बोझ है। इन सब आशीषों के लिए पहले हमको अपने कार्य को करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको ईश्वर की दया से बच सकते हैं अगर हम पहले कार्य करें। आओ हम विश्वास, खुशहाली, लगन, जिम्मेवारी और प्यार से कार्य को करें और हम नामुमकिन को मुमकिन कर दें। हमें हासिल करना है जो एक इंसान दिमाग के लिए नामुमकिन है हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे प्यारे पिता और उद्धारकर्ता के बलिदान की तोहफा से हमने ये मिलता है कि हम भगवान और अपने परिवार के साथ हमेशा के साथ रह सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब याद करें जब हम सैक्रमेंट को लेते हैं, जो वादा हमने स्वर्ग पिता के साथ लिया था बपतिस्मा के वक्त। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अव्वल भूमिका निभाए, एक पति और पत्नी, माता पिता, बच्चों, भाइयों और बहनों की, हमारे गिरजा के कॉलिंग्स की, गॉस्पल की प्रचार करने में, उनके बचने में जो कम हो गया है, हमारे पूर्वजों के मुक्ति के लिए, अपने कामों में और अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में हम अपोस्टल पॉल जैसा कहें, मैं एक अच्छा लड़ाई लड़ा, मैं अपना कार्य खत्म किया, मैंने अपना विश्वास रखा। ऐसा जब हम करेंगे तब हम स्वर्ग पिता के इच्छाओं को पूरे कर रहे हैं। वह हम सब को कुछ देना चाहता है जो उनके पास है, ये ताकि हमको आनंद जीवन भी देखेगा जो सबको अनमोल तोहफा है। जैसे इंसानी नज़र से सिद्ध होना नामुमकिन है, मैं बयान देता हूँ कि हमारे बयान पिता और उद्धारकर्ता ने हमको दिखलाया है कि हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हम यह मुमकिन है कि हमको आनंद जीवन मिल सकता है। हाँ, ये मुमकिन है कि हम आज हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। इस योजना की रचना हमारे स्वर्ग पिता ने की है और वह जीवित है। उनके पुत्र यीशु मसीह इन अपने ऊपर हमको सबका पापों को बोझ लिया है, हर एक ना इंसाफी इस दुनिया के, ताकि हमको अपने पापों से छुटकारा मिले। मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। सुसमाचार और स्वर्ग अधिकार प्रिस्टुड इस धरती पर लौट आया है प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ के द्वारा। आज हमारे पास बहुत सारे अपोजल्स एंड प्रॉफिट्स के आशीष हैं जिन्हें भगवान ने भेजा और बुलाया है। प्रधान जोसेफ एस थॉमस मॉन्सन को भगवान ने बुलाया दी है कि वह ये कार्य को आगे बढ़ाए। वो भगवान का प्रॉफिट है। मैं बयान देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Brothers and sisters,
Bhaiyo Behno,
I omitted three names of
the teen brethren as we Bhaiyo ko sustaining who are being released karne ke liye chhod diya tha. Main prastut kiya jata hai ki Elder Daryl H. Kahn, Clay W. Mask, Robert C. Oaks, members of the Second Quorum of the 70 may say, those who had attacked,
that I should have made that mistake when I love these men so much gives me the opportunity to beg their pardon in public and for their families. We so appreciate their wonderful service. The choir and congregation,
ab gaega kami children of the Lord. गाने के बाद 70 के एल्डर टेड आर कैलिस्टर और केंट डी वाटसन हमसे बोलेंगे। एल्डर वाटसन के बाद हम कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल के एल्डर नील एल एंडरसन के खुशी से सुनेंगे।
This is the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ki 179 semi-annual general conference hai.
Thank you. अगर कोई आपसे न्यू टेस्टामेंट के किसी व्यक्ति के बारे में ये तीन चीजें बताएं, पहला प्रभु ने इसके बारे में कहा कम विश्वास करने वाले, दूसरा गुस्से में इस व्यक्ति ने हाई प्रीस्ट के नौकर का कान काट दिया, और तीसरा इस आदमी ने प्रभु को जाने से तीन बार इनकार किया। अगर आपको केवल यही तीन बातें पता हो लेकिन साथ, तो आपको लगेगा कि ये आदमी बुरा है, लेकिन आपने साथ में एक महान व्यक्ति को जानने में भूल की है, पीटर द अपोसल। इसी तरह कोशिश की गई है कि प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ की कमजोरियों पर ही ध्यान दिया जाए। प्रभु ने गॉस्पल को पृथ्वी पर फिर से लाने के लिए जोसेफ स्मिथ को चुना था। पेड़ों के बीच अपनी प्रार्थना के बाद जोसेफ स्मिथ को चार मौलिक सच्चाइयों का पता चला जो तब मुख्यतः क्रिश्चियन संसार नहीं सिखा रहा था। पहला, परम परमात्मा और उनके बेटे ईसा मसीह दो अलग जीव हैं। बाइबल इसकी पुष्टि करती है, वो बताती है कि पुत्र ने अपनी इच्छा पिता को सौंप दी थी। हम प्रभु के इस कर्म के वजह से विनम्र हैं और उनके उदाहरण से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन क्या ये उदाहरण प्रेरणापूर्ण होता यदि पिता और पुत्र एक ही जीव होते? स्क्रिप्चर से हमें इस सच्चाई का और सबूत मिलता है। भगवान दुनिया से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। एक बेटा अपने इकलौते बेटे को दे दे, ये प्यार का सबसे उत्तम प्रदर्शन है। अब्राहम और आइजक के ये दिल को छूने वाली कहानी इसका प्रतीक है। लेकिन अगर पिता और पुत्र एक ही जीव हैं, तब ये बलिदान अपना अर्थ खो चुका है, और अब अब्राहम का बलिदान कर रहा है। दूसरी सच्चाई जो जोसेफ स्मिथ ने सीखी वो ये है कि परमपिता और पुत्र के महिमामय शरीर मांस और हड्डियों के हैं। प्रभु के रेजरेक्शन के बाद वे अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और बोले, छुओ और देखो, क्योंकि आत्मा के पास मांस और हड्डियां नहीं होती हैं जिस तरह मेरे पास हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल कुछ समय के लिए था, लेकिन स्क्रिप्चर्स बताती हैं कि ये नामुमकिन है। पॉल ने सिखाया, प्रभु मृत अवस्था से फिर से जीवित हुए हैं और अब कभी नहीं मर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, रेजरेक्शन के बाद प्रभु का शरीर उनकी आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। तीसरी सच्चाई जो जोसेफ स्मिथ ने सीखी वो ये थी कि भगवान आज भी मनुष्य से बोलते हैं। इस विषय में एल्डर ह्यू बी ब्राउन ने तीन सवाल पूछे। पहला, क्या भगवान हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि न्यू टेस्टमेंट के लोगों से, जितना जिनसे वो बोलते थे? दूसरा, क्या भगवान अभी भी पहले जैसे शक्तिशाली हैं? और तीसरा, क्या हमें उनकी आज भी उतनी जरूरी है पहले जैसे? अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तब फिर, और अगर भगवान वही हैं पहले, आज और हमेशा, तो फिर भगवान आज मनुष्य से उसी तरह बोलते हैं जिस तरह जोसेफ स्मिथ ने बताया था। चौथी सच्चाई जिसके बारे में जोसेफ स्मिथ ने सीखा था वो ये है कि पूरा ईसा मसीह का चर्च धरती पर नहीं था। अच्छे लोग और सच्चाई थे, लेकिन अंग थे, लेकिन अपोस्टल पॉल ने बताया था कि मसीह दूसरी बार नहीं आएंगे जब तक उनका चर्च धरती से हट जाए। जोसेफ स्मिथ के पहले विजन के बाद मसीह का चर्च धीरे धीरे वापस आने लगा। जोसेफ स्मिथ द्वारा इस सच्चाई की वापसी हुई कि गॉस्पल उन मरे हुए लोगों को आत्माओं की दुनिया में सिखाई जा रही है जिनको धरती पर सुनने का मौका नहीं मिला। ये एक बिब्लिकल सच्चाई है, पीटर ने सिखाया, इसलिए गॉस्पल मृत लोगों को सिखाया गया है क्योंकि उनका निर्णय मांस में आदमी द्वारा हो सके, लेकिन वे भगवान के अनुसार आत्मिक रूप में जाएं। चर्च ऑफ इंग्लैंड के फ्रेडरिक डब्ल्यू फरार ने कहा, हर कोशिश की गई है कि इस साधारण स्क्रिप्चर का मतलब बताने के लिए, इसमें कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। जब मसीह की आत्मा धरती पर आई, तब गॉस्पल माफी ना मांगने वाले मृत लोगों को सिखाई गई। जोसेफ स्मिथ ने सिखाया कि कई स्वर्ग हैं। पॉल ने एक आदमी के बारे में बताया जो तीसरे स्वर्ग में था। क्या तीसरा स्वर्ग पहले और दूसरे स्वर्ग के बिना हो सकता है? जोसेफ स्मिथ के आने से ईसा मसीह के गॉस्पल की कई पहेलियां सुलझ गईं, जिसके कारण लोग बोले, अब मैं समझा कि मैं कहां से आया हूं, यहां क्यों हूं और कहां जा रहा हूं। प्रभु ने जोसेफ स्मिथ से कहा, ये पीढ़ी मेरे शब्दों को तुम्हारे द्वारा प्राप्त करेगी। इस बिब्लिकल सच्चाइयों की बाढ़ के बावजूद कुछ लोग कहते हैं, मैं इन सिद्धांतों को स्वीकार सकता हूं, लेकिन उन फरिश्तों और दिव्य दृष्टियों का क्या जो जोसेफ स्मिथ ने कहा कि वो उन्होंने देखे थे? उनमें विश्वास करना मुश्किल है। उन लोगों से हम प्यार से कहते हैं, क्या फरिश्ते और दिव्य दृश्य न्यू टेस्टमेंट में ईसा मसीह के चर्च के समय नहीं थे? क्या माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर पीटर, जेम्स और जॉन ने फरिश्ते नहीं देखे थे? क्या पीटर ने जेंटाइल्स के पास जाने के समय गॉस्पल के दिव्य दृश्य नहीं देखे थे? और स्टीफन ने परमपिता और पुत्र का एक दिव्य दृश्य नहीं देखा था? हाँ, जोसेफ स्मिथ ने फरिश्ते और दिव्य दृश्य देखे थे, क्योंकि वे भगवान के हाथ में एक वादन थे, ताकि वे उसी ईसा मसीह के चर्च और उसकी शक्तियों को लौटा सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन कीमती सच्चाइयों को नहीं अपनाते हैं और ऐसा करने में अपने धार्मिक जन्मसिद्ध अधिकार को ठुकरा देते हैं। इससे उनके विश्वास उन चीज़ों में भी कम होने लगता है जिनको वो जानते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा जो हम पूरी तरीके से ना समझ सकें जब तक विश्वास करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में वो निश्चित सिद्धांत भी हैं जिनके सहारे हमारी गवाही बन सकती है। जब मसीह के कई अनुयायियों ने छोड़कर चले गए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे? पीटर का जवाब हम सभी के दिलों पर लिखा होना चाहिए। किसके पास जाएंगे? आप ही के पास अनंत जीवन के शब्द हैं। अगर कोई इन वापस लाए गए सच्चे सिद्धांतों को नहीं अपनाएगा, तो वो भगवान के सच्चे स्वभाव, पुनर्नश्वर होने के जीवन, मृत लोगों के बैप्टिज्म और अनंत विवाह के बारे में कैसे जान पाएगा? जोसेफ स्मिथ द्वारा अनंत जीवन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां, चाबियां और धार्मिक क्रियाएं लौटाई गई हैं। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। अनंत जीवन के लिए यही मिल सकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, पूरी दुनिया में केवल यही सच्चा और जीवित चर्च है। मैं गवाही देता हूँ कि जोसेफ स्मिथ, प्रभु ने कहा, पूरी दुनिया में केवल यही सच्चा और जीवित चर्च है। मैं गवाही देता हूँ कि जोसेफ स्मिथ रेस्टोरेशन के प्रॉफिट थे। मैं प्रेज टू द मैन हु कम्यून्ड विद जवोहा के हिम पर जोर डालता हूँ, ईसा मसीह के नाम में, आमेन।
In response to the prophet,
पैगंबर जोसेफ स्मिथ के पूछने पर प्रभु ने सिखाया और कोई भी इस कार्य में सहायता नहीं दे सकता सिर्फ वो जो विनम्र हो प्यार से भरा हो जिसके पास भक्ति आशा और उदारता हो सभी बातों में संयम रखता हो चाहे जो उसे सौंपा जाए ये आदेश सभी बातों में संयम रखने का हम सभी को लागू है संयम क्या है और प्रभु हमें संयम रखने के लिए क्यों कहता है इसकी एक अधूरी व्याख्या हो सकती है खाने और पीने में नियंत्रण रखना हाँ संयम रखने का मतलब विवेक के बोल पालने में एक अच्छा नुस्खा हो सकता है संयम की व्याख्या हो सकती है क्रोध से संभालना या अपना संतुलन नहीं खोना पर संयम का ये मतलब धर्मग्रंथों में संयम के इस्तेमाल का सिर्फ एक अंग है आत्मिक ढंग से संयम का ईसा मसीह एक दैवी गुण है वो चाहते हैं कि हम सभी इस गुण को का विस्तार करें सभी बातों में संयम पाना ये एक आत्मिक भेंट है जो पवित्र आत्मा द्वारा उपलब्ध है जब धर्मदूत पॉल ने गलेशियन लोगों को कुछ आत्मिक फलों के बारे में खत में वर्णन दिया उसने प्यार सुख शांति सहनशीलता कोमलता अच्छाई भक्ति नम्रता और संयम का उल्लेख किया पॉल ने टाइटस को खत में ये गुण बताए जो किसी भी बिशप को इस कार्य में सहायता देने के लिए जरूरी है उसने कहा बिशप को स्वयं इच्छा पालक या जल्द क्रोधित नहीं होना चाहिए पर संयम रखना चाहिए संयम रखना है सभी बातों में संतुलन रखना या खुद पर काबू पाना जब छोटा अल्मा गिडियन में सिखा रहा था उसने कहा मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारे दिल घमंड से उठे नहीं हैं हाँ मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारे दिल दुनिया की दौलत और घमंडी बातों पर नहीं बसे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम नम्र होकर आज्ञाकारी और कोमल बनो समझाने में आसान धीरज से भरे और सहनशीलता से भरे सभी बातों में संयम रखते हुए इसके बाद के एक संदेश में आलमा ने सिबलन को सिखाया घमंड से मत भर जाओ बल्कि हमें सभी बातों में परिश्रमी होकर संयम रखना चाहिए संयम रखने का मतलब है सावधानी से अपनी चाहत और उम्मीदों की जांच करना नेक उद्देश्यों के लिए परिश्रम करके धैर्य रखना कुछ साल पहले मैं काम से गाड़ी चलाते घर लौट रहा था जब एक बड़ी ट्रक जो विरुद्ध दिशा में यात्रा कर रहे थे ने अपना एक टायर खोया टायर हमारे लेन के बीच की बाधा के ऊपर से उड़ा वो फिर मेरे रास्ते पर उछलते आया गाड़ियां दोनों तरफ मुड़ रही थी वाहन चालकों को पता नहीं पड़ रहा था कि टायर किस तरफ अगली बार मुड़ेगा मैं बाईं ओर मुड़ा जब मुझे दाहिने ओर मुड़ना चाहिए था और टायर ने अपनी आखिरी छलांग मेरे शीशे पर ली एक दोस्त ने मेरी बीवी को दुर्घटना के बारे में बताया उसने बाद में मुझे बताया कि उसका पहला ख्याल धार वाली शीशे के घाव का था मैं अवश्य कांच के टुकड़ों के साथ लादा गया पर मुझे एक भी खरोच नहीं आया वो इस वजह से था कि मेरी गाड़ी का शीशा संयम कांच से बना था संयम कांच को संयम फौलाद की तरह एक नियंत्रित प्रक्रिया से गर्म किया जाता है जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है इस कारण जब संयम कांच को तनाव मिलता है और वो टूटती है वो आसानी से घाव वाले टुकड़े नहीं होते जो घाव पहुंचाते हैं वैसे ही एक संयम मानस एक जो विनम्र और प्यार से भरा हो उसके पास अधिक आध्यात्मिक शक्ति होती है अधिक आध्यात्मिक शक्ति की वजह से हम स्वयं नियंत्रण का विस्तार कर सकते हैं और निग्रह से जी सकते हैं हम अपने क्रोध या गुस्से को और अपनी व्यस्तता और गुरु को बस में लाना सीखते हैं और संयम सीखते हैं अधिक आध्यात्मिक शक्ति से हम इस काल की भयंकर जातियों से और हानिकारक लतों से सुरक्षित रख सकते हैं हम सभी मन की शांति सोचते हैं और हमारे परिवारों के लिए सुरक्षा और सुख चाहते हैं अगर हम इस पिछले साल के आर्थिक मंदी में कुछ भलाई देखना चाहते हैं तो शायद हम उन मुसीबतों से सीख सकते हैं जो हम में से कुछ लोगों ने सही है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सुरक्षा या सुख घर खरीदने से या अधिक चीज़ें इकट्ठा करने से नहीं मिलती अगर हमारा कर्ज बचत और आमदनी से अधिक है। हम एक अधीर और असंयमी दुनिया में जीते हैं जो अनिश्चितता और विवाद से भरी है। वो उस धर्म परिवर्तित लोगों के समूह जैसे है जिन्हें जोसेफ स्मिथ ने अपने घर के पास देखा था। वह 14 साल का था जब उसने सवालों का जवाब खोज रहा था। जोसेफ ने कहा उनकी सभी की इच्छा और भावनाएं एक दूसरे की तरफ जो थी, अगर वो थी भी तो वो खो गई बहस और संघर्ष में। हमारे परिवारों को सुरक्षा खुद पर काबू पाना सीखने से, जो दुनिया की जातियां टालने से, सभी बातों में संयम रखने से आती हैं। मन की शांति ईसा मसीह पर अधिक भक्ति से आती है। सुख मिलता है उन वचनों का दृढ़ आज्ञा पालन से जो हम बपतिस्मे के समय और प्रभु के पवित्र मंदिरों में लेते हैं। हमारे संयम का ईसा मसीह से अच्छा नमूना कौन है? जब हमारे दिल बहस या वाद विवाद से खोदित होते हैं, उद्धारकर्ता ने सिखाया हमें पछताना चाहिए और छोटे बच्चे की तरह बनना चाहिए। भाई के साथ समझौता करके उनके पास पूरी मनोकामना के साथ जाना चाहिए। जब और लोग क्रोध होते हैं, ईसा ने सिखाया मेरी करुणा मुझसे परे नहीं होगी। जब हम मुसीबत का सामना करते हैं, उन्होंने कहा पीड़ा में धैर्य रखो, बुरा कहने वालों को फिर बुरा मत कहा, नम्रता से तुम्हारे घर पर शासन करो और अटल रहो। जब हम पर अत्याचार किया जाता है, दिलासा लो ये जानने में कि उसके साथ भी अत्याचार हुआ था, वो पीड़ित हुआ फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने यकीनन हमारे दुख सहे हैं और हमारे शोक उठाए हैं। जब ईसा मसीह जो सबसे श्रेष्ठ था हमारे लिए पीड़ित हुआ, इतना कि उसके हर रोमकूप से लहू बहा, उसने न तो क्रोध जताया ना ही पीड़ा से कुछ बुरा कहा। उसने बेमिसाल नियंत्रण या संयम के से खुद के बारे में नहीं पर तुम्हारे और मेरे बारे में सोचा और फिर विनम्रता से और प्यार के लफ्जों से उसने कहा फिर भी गौरव पिता को मिलो और मैंने अपना हिस्सा और तैयारी इंसान के बच्चों की ओर पूरी की है। इस पिछले साल मुझे सम्मान मिला है गवाही देने का हमारे उद्धारकर्ता के अस्तित्व के बारे में और सुसमाचार की बहाली के बारे में एशिया भर में के कई संतों और दोस्तों को। उनमें से लगभग सभी पहली पीढ़ी के संत हैं जो गिरजे की अघाड़ी में रहते हैं। उनकी ये अंतिम दिनों की सैर हमें बीते हुए काल के प्रारंभिक अंतिम दिनों के संतों की याद दिलाती है। एशिया की अद्भुत विभिन्नता में ईसा मसीह के अंतिम दिनों के संत इस विशाल जनसंख्या के सिर्फ एक अंश हैं। मुझे और बढ़िया अनुमान आया है मसीह जैसे संयम के गुण का। मैं उन संतों के प्यार से प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे उनके नमूने से विनम्र और प्यार भरा होने का मतलब सिखाया है, सभी बातों में संयम रखने का जो भी उन्हें सौंपा जाए, उन्हें उनके द्वारा मैं ईश्वर का उनके बच्चों की ओर प्यार और अच्छी तरह समझ पाया हूँ। मैं अपना बयान देता हूँ कि हमारा मुक्तिदाता जीवित है, उनका संयम का तोहफा ईश्वर के सभी बच्चों को उपलब्ध है। ईसा मसीह के नाम से आमीन।
मेरे भाई और बहनों, 6 महीना हो गया है जब मैं कोरम ऑफ द 12 में आया था। अब मैं उन चेलों के साथ कार्य कर रहा हूँ जिनके पास अनुभव है, मेरे शिक्षक रहे हैं। मैं आपकी प्रार्थना और सस्टेनिंग से आभारी हूँ। मेरे लिए ये प्रार्थना के समय है कि प्रभु भी मेरे कार्य को स्वीकार करे, उनके प्रेम को मैंने महसूस किया है
मैं बयान देता हूँ कि वह जीवित है और यह उनका कार्य है। मैं प्रेसिडेंट थॉमस एस मोनसन, जो प्रभु का प्रोफेट है, उनको सम्मान देता हूँ। इंटरव्यू के समय उन्होंने मुझे गले लगाया। वह एक लंबे कद का आदमी है। जब उन्होंने मुझे झप्पी दिया, मुझे ऐसा लगा कि मैं उन पे अपने पिता से गले लग रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने प्रभु के निमंत्रण को बहुत याद किया कि हम उनके पास आकर उनके गले लगे। उन्होंने कहा, देखो मेरे दयालु बच्चे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, दयालु बाहें तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, और जो कोई आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा और उन्हें आशीर्वाद मिलेगा जो आएगा। स्क्रिप्चर उनके बाहों को खुला विस्तृत और घेरने वाला बतलाता है। उन्हें शक्तिशाली, पवित्र, दयालु, सुरक्षा, प्रेम और सभी समय खुला हुआ भी कहता है। हम सभी ने उनके आत्मिक बाहों को महसूस किया है। उनके क्षमा, प्रेम और सुगति को महसूस किया है। प्रभु ने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हें आराम देता हूँ। प्रभु की इच्छा कि हम उनके बाहों में आए, हमारा पश्चाताप का भी निमंत्रण है। उन्होंने कहा, देखो मेरा निमंत्रण सभी के लिए है, मेरा दयालु बाहें तुम्हारे लिए है, पश्चाताप करो और मैं तुम्हें अपनाऊंगा। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम उनकी ओर हो जाते हैं। हमारे पश्चाताप का निमंत्रण सजा की आवाज नहीं है, लेकिन एक प्रेम का निमंत्रण है कि हम बदल कर उनके पास आ जाए। या पिता और पुत्र का मांग है कि हम उनकी तरह बने, कि हमें खुशहाली मिले और उनकी आज्ञाओं को स्वीकार करें। उनके डिसाइपल होकर यह एक आशीर्वाद है कि वह हमें माफ कर देगा अगर हम पश्चाताप करें। यह हमारी सोच और महसूस को पवित्र करेगा। आज 10,000 जो सुन रहे हैं, उनमें कई अलग तरह के अच्छाइयां और पवित्रता है। पश्चाताप एक आशीर्वाद सभी के लिए है। हम सबको सेविया की दया को महसूस करना है जब हम पापों के लिए पश्चाताप करें। कई साल पहले मुझे एक आदमी जो पापों में रह रहा था को मिलने के लिए कहा गया। अपने गलत इच्छा अनुसार वो गिरजा के सदस्य था को खो दिया था। अब वह अपने पापों को ठुकरा कर आज्ञाओं का पालन कर रहा था, लेकिन उनके पुराने गलती उनको परेशान कर रहा था। उनको मिलकर मैं उनका शर्म और पश्चाताप महसूस कर रहा था। इंटरव्यू के अंत में मैंने उनको प्रिस्टूड का आशीर्वाद दिया। ब्लेसिंग के समय मैंने प्रभु का प्रेम और क्षमा को महसूस किया। ब्लेसिंग के बाद हम गले मिले और वह रो पड़ा। सेविया का दयालु और प्रेम की बाहें उन सभी के लिए है जो क्षमा मांगता है। मैं बयान देता हूँ कि सेविया ही हमें क्षमा दे सकता है। जो कोई पूर्ण रूप से गॉस्पल को जानकर अलग हो जाता है, उनको माफी नहीं मिलती। ये एक आशीर्वाद है कि हमें क्षमा मिल सकता है कि हम लौटकर यीशु के पास आ जाए। स्वर्ग से क्षमा मिलना गॉस्पल का एक आशीर्वाद है जो पश्चावा और पीड़ा को हृदय से निकाल कर आनंद और शांति भर देता है। यीशु ने कहा, क्या तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगे और अपने पापों का क्षमा मांगोगे कि मैं तुमको चंगा कर दूं? आपको शायद हृदय की बदल की जरूरत है कि आप अपना पापों को जान सके। इसमें आपको बिशप की जरूरत है। बहुतों को पश्चाताप अकेले में बिशप से मिलके करना चाहिए कि प्रभु उनका मदद करे। और बहुतों को के लिए पश्चाताप एक दिन में नहीं मिल सकती। ये सरल भी नहीं है, बदलना कठिन है। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पश्चाताप के समय आपको घुट, घमंड, गुस्सा और अपवित्र सोच को निकालना है और अच्छाइयों और पवित्रता को अपनाना है। इससे प्रभु के पास लौटना, इसे प्रभु के पास लौटना कहते हैं। हमें कैसे जानना है कि पश्चाताप के लिए क्या करना है? जब कोई अपना या दोस्त हमें गलतियों के बारे में बतलाता है, हम अंदर सोचते हैं कि ये मुझे बता रहा है, मैं उनकी गलतियों को जानता हूं। ये सोचने से अच्छा है कि हम नम्रता से प्रभु को सुने, पिता आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? इससे हम महसूस करेंगे कि क्या बदलना लाना है। प्रभु हमारे मन और हृदयों में बतलाएगा, तब हम चुन सकते हैं कि हमें क्षमा मांगना है, कि खिड़की जहां से आशीर्वाद आती है उसको बंद करना नहीं है। अलमा ने चेतावनी दी, बहाना मत बनाओ। जब हम खिड़की बंद करते हैं, हमारी मदद करने वाला पे हम विश्वास भी बंद कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हमारे प्रार्थना में विश्वास नहीं रहता। आप महसूस कुछ सोच रहे हैं, ब्रदर एंडरसन आप समझ नहीं रहे हैं, आप वो नहीं महसूस करते जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इसे बदलना मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से नहीं समझता, लेकिन एक है जो सब जानता है। उन्होंने आपका पीड़ा सहा है। उन्होंने बोला, मेरे हथेली में आपका छाया है। वह खड़े होकर हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ। हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बदलते समय हमें महसूस करना है कि हमें क्या गलती किया है। इससे हम सच्चाई से प्रभु और बिशप को कन्फेस कर सकते हैं, बतला सकते हैं, और जहां जरूरत हो हमने जो बिगाड़ा है उसे सुधार सकते हैं। पश्चाताप सभी दिन करना चाहिए। सैक्रमेंट लेने के समय हम प्रभु के सामने नम्रता से आकर उनसे माफी मांग सकते हैं और वादा करते हैं कि हम हमेशा उनको याद करेंगे। कुछ समय यीशु की तरह बनने के समय हम अपने आप को वही पाप में फिर पाते हैं। कुछ समय आगे निकलकर पीछे देखने से ही वह पाप नजर आता है। हिम्मत नहीं छोटा करना चाहिए। अगर आप अच्छा बनने की कोशिश में है तो आप पश्चाताप करेंगे। जब हम सफलता पाते हैं, हमारी नजर साफ हो जाती है और हम पवित्र आत्मा को महसूस करने लगते हैं। कुछ समय हम सोचते होंगे कि क्यों बीते हुए दिन पश्चाताप के बाद याद आती है, क्यों उसको सोचते ही दुख छा जाती है। प्रेसिडेंट जेम्स ई फाउस्ट का ये कहानी याद करो। मैं एक छोटा बच्चा फार्म में अपने आजी को याद करता हूँ, जो जलती हुई लकड़ियों पर खाना बनाती थी। जब लकड़ी समाप्त होता था, आजी चुपके से घड़ू लकड़ियां ले आती थी। प्रेसिडेंट फाउस्ट रोता हुआ बोला, मैं कितना बेसोच था। मैं वहां बैठकर अपने आजी को काम करते देखता रहा। मुझे शर्मिंदा है ये सोचकर कि मैंने उनको मदद नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि वह मुझे किसी दिन माफ कर देगी। कुछ 65 दिन गुजर चुके थे, लेकिन प्रेसिडेंट फाउस्ट अभी भी उन दिन के लिए शर्मिंदा था। ये हमारे जीवन के प्रगति के लिए जरूरी है। स्क्रिप्चर नहीं बतलाता कि हम अपने पापों को भूल जाएंगे, लेकिन बतलाता है कि प्रभु उन्हें भूल जाएगा। पापों का पछतावा करने का मतलब आप फिर कभी वह पाप लौट कर ना करें। इसलिए हम उन्हें भूलते नहीं हैं। अगर हम सच्चाई से अपने पाप को कन्फेस करेंगे, बतलाएंगे और उन पापों को ठुकरा देंगे और आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमें क्षमा प्राप्त होगा। समय के साथ हमारा जो शर्मिंदगी है वह शांति से भर जाएगा। जो सचमुच पश्चाते हैं और फिर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप आज्ञाओं का पालन कीजिए। मैं वादा करता हूं कि प्रभु अपने समय में आपको चंगा कर देगा। अगर आपको मदद की जरूरत है, अपने बिशप के पास जाइए। उनको शक्ति दिया गया है, आपकी मदद करेगा। स्क्रिप्चर चेतावनी देता है, पश्चाताप करने में देर मत कीजिए। अभी देर नहीं हुआ। एक समय मुझसे पूछा गया कि मैं एक पति और पत्नी से मिलूं। वे पैदाशी गिरजा के मेंबर थे। शादी के बाद वे गिरजा से अलग हो गए थे। अब 50 साल बाद वह लौट रहे थे। वह आदमी एक ऑक्सीजन टैंक लेकर लिए ऑफिस के अंदर आया। वो शर्मिंदा के साथ थे कि वो उतने दिन गिरजा में नहीं थे। मैंने उनको बताया कि हम खुश हैं कि वो लौट आए हैं और कि प्रभु के बाहें उनके लिए खुले हुए हैं। उस आदमी ने फिर कहा, हम ये जानते हैं ब्रदर एंडरसन, लेकिन अब दुख का बात ये है कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे गिरजा के आशीर्वाद से बाहर है। हम लौट आए हैं लेकिन अकेले। वो अकेले नहीं थे, क्योंकि पश्चाताप सिर्फ बदलती नहीं लाती, लेकिन हमारे परिवारों को भी आशीर्वाद देती है। हमारा पश्चाताप हमारे बच्चों और संतानों को आशीर्वाद देती है। पश्चाताप से खुशहाली प्राप्त होती है। मैं बयान देता हूँ कि सेविया हमें पापों से मुक्त करेगा। मैंने उनके शक्ति को महसूस किया है। मैंने उन्हें दुनिया भर में घाव भरते देखा है। मैं बयान देता हूँ कि वह शर्मिंदगी को हमारे हृदय से निकाल कर उसमें शांति डाल देगा। वह हमसे प्रेम करता है। हम उनके गिरजा के सदस्य हैं। वह निमंत्रण देता है कि हम पश्चाताप करें और उनके पास लौट आए। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We remind the brother.
हम भाइयों को ध्यान दिलाते हैं कि जनरल परिषद मीटिंग इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में शाम को 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम से शुरू होगी. कल सुबह टैबरनकल क्वायर का प्रसारण सुबह 9:30 to 10 माउंटेन डेलाइट टाइम से होगा. उसके बाद तुरंत संडे की सुबह का सेशन होगा. हम क्वायर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस दोपहर सुंदर संगीत प्रदान किया है. प्रेसिडेंट बॉयट के पैकर को क्वोरम ऑफ द 12 अपोस्टल के प्रेसिडेंट है और इस सेशन के आखिरी वक्ता होंगे. उनके बाद क्वायर फिर गाएंगे आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स. गाने के बाद प्रार्थना फिर एल्डर रॉबर्ट सी वुड द्वारा करे गए जाएंगी जिन्होंने इस दोपहर 70 से रिलीज किया गया है.
कोई भी पिता अपने बच्चों को खतरनाक इलाकों में नहीं भेजेंगे जहां जीवन भर उन्हें परखा जाएगा, जहां लूसिफर खुलेआम घूमता है और उन्हें सिर्फ एक ही चीज संरक्षण मिलेगा. फिर वो उन्हें उस चीज के साथ में देगा जिससे वो पिता और उनके बेटे के साथ में वार्तालाप कर सकें. हर बच्चा जो इस धरती पर भेजा जाता है उसे भगवान की आत्मा और यीशु की रोशनी को दिया जाता है. विस्थापितकरण एक 14 साल के लड़के की प्रार्थना के साथ में शुरू हुआ और उसके बाद में समय की पूर्णता का डिस्पेंसेशन शुरू हुआ. पूर्णता के साथ में उसके बाद में हमारे प्रीमॉडल जीवन के बारे में ज्ञान को मिला. स्क्रिप्चरों से हमने जाना कि स्वर्ग में काउंसिल था कि निर्णय किया कि बच्चों और बेटियों को इस जीवन दिया जाएगा ताकि वो शरीर को पा सकें. हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास में एक शरीर है जो भगवान एक का मंदिर भी है. स्क्रिप्चर कहते हैं नो ई दैट द टेम्पल ऑफ गॉड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड dwelleth in you. भगवान के बच्चे के रूप में हम जानते हैं कि हम उसके खुशी के प्लान का भाग हैं. हम जानते हैं कि स्वर्ग में एक लड़ाई हुई थी और लूसिफर उसके पीछे चलने वाले को वहाँ से निकाला गया. शैतान को जो भगवान के साथ में लड़ाई करी और भगवान के राज को छीनना चाहा. Wherefore he maketh war with saints of God and encompasses them round about. हमें अपना चुनाव करने की शक्ति देगी, हमें उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है ताकि हम आत्मा के करीब रह सकें. नहीं तो हम शैतान की पकड़ में अपने आप को पा सकते हैं. हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा में हमारे पापों को धोया जा सकता है और हमारे शरीर को पुनर्जीवन में निर्दोष रूप में वापस उठाया जाएगा. For behold, the Spirit of God is given to every man that he may know good from evil. इस प्रकार मैं तुम्हें निर्णय करने के लिए शक्ति दूंगा ताकि तुम अच्छा कर सको, मसीह में विश्वास के साथ में और आगे जाओ मसीह के पाव शक्ति के साथ में ताकि तुम जान सको कि भगवान क्या है और उसका ज्ञान बना सको. आत्मा के साथ में वार्तालाप करने का एक सही तरीका है क्योंकि अगर उसके द्वारा तुम मांगोगे तो तुम्हें भगवान की गहरी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा. यीशु मसीह के गिरजे में बपतिस्मा के बाद में एक दूसरा ऑर्डिनेंस है, वो है सर पे हाथ रखने का और पवित्र आत्मा के उपहार को पाने का. और उसके साथ में एक आवाज़ आती है, उससे दिमाग के अंदर साफ बात आती है. पवित्र आत्मा हमें आत्मा को निर्देशन देता है और उस निर्देशन के साथ में हम उस आत्मिक वार्तालाप के शब्दों को महसूस कर सकते हैं जैसे हम उन्हें सुनते हैं और फिर उन्हें अपनी आत्मिक आँखों से चीज़ों को देखते हैं अपनी खुद की आँखों से ज़्यादा. कई सालों में 12 कोरम द 12 अपोस्टल एल्डर एल्गर ने रिचर्ड्स ने सेवा करी. वो 96 उम्र में उनका देहांत हुआ. 12 साल की उम्र में उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट विल्फर्ड वुडरूफ से सुना. प्रेसिडेंट वुडरूफ ने को उन्होंने बोला बताया कि उन्होंने कनाडा जाना था ताकि वो लोग को ज़ायन में ला चुके. वो अपने एक भाई के घर इंडियाना में रुके और फिर वो और उनकी पत्नी सोने गए. जब जैसे दूसरा परिवार घर के दूसरे भाग में सोया और उस समय सोते समय आत्मा ने उनके कान में कहा और फिर वो खड़े हुए और उन्होंने सुनने गए और फिर आत्मा ने कहा कि तुम अपने घोड़े को उस झाड़ से दूर करो. उन्होंने वो सुना और वो वापस उनके वो वापस बिस्तर पे गए. 30 मिनट बाद वो झाड़ गिर गया उसी जगह पे जहाँ पे घोड़ा खड़ा हुआ था. अगर वो उन्होंने घोड़े को वहाँ से हटाया नहीं होता तो उनके घोड़े गाड़ी टूट गई होती. और इस प्रकार पवित्र आत्मा की बात को सुन के एल्डर वुड्रफ ने खुद के जीवन को बचाया, उनकी बीवी और बच्चे को भी. जब 50 साल पहले मुझे जनरल अथॉरिटी के रूप में बुलाया बुला, हम एक छोटे से प्लॉट पर रहते थे यूटा वैली में, जहाँ पे हमारे पास में कुछ जानवर थे और काफ़ी बच्चे थे. एक शनिवार मैं एयरपोर्ट जाने वाला था ताकि मैं स्टेट कॉन्फ्रेंस में जा सकूं जो कैलिफोर्निया में थी, पर एक गाय ने उसी दिन बछड़े को जन्म दिया था और वो बच्चे देने वाली थी और वो मुसीबत में थी. तो हमने वेटनेरियन को बुलाया हमने ये जाना कि वो गाय वो दिन की नहीं जी पाएगी. उसके बाद ने हमने एक परिवार की प्रार्थना करी. हमारे बेटे ने प्रार्थना करी. उसके बाद में उन्होंने दिल से प्रार्थना करी. हमारे बच्चे लड़के ने कहा स्वर्ग की बताए हमारी गाय को आशीर्वाद दे थे कि वो ठीक हो जाए. कैलिफोर्निया मैंने उस घटना के बारे में कहा. उन्होंने जाना कि हमें हर चीज़ सिर्फ प्रार्थना करने से इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी. हमें एक सीख सीखनी थी. जब मैं रविवार को लौटा तो बॉसी जो गाय थी वो ठीक हो गई थी. ये तरीका सिर्फ प्रॉफिटों का अकेले के लिए नहीं है. पवित्र आत्मा का जो उपहार है वो हम सब के लिए बराबर रूप से काम करता है और किसी भी मुसीबत के लिए वो हल निकाल सकता है. And now he imparted his word by angels unto men, yea, not only men, but women also. This is not all. Little children do have words given unto them many times, which confound the wise and the learned. भगवान ने एक तरीका दिया है ताकि वो ज्ञान को अपने दिमाग में दे, हमें निर्देशन दे सकें और चेतावनियाँ भी. भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कहूँगा, तुम्हारे दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे दिल में रहेगी. और इनस ने लिखा है, While I was struggling within the spirit, behold, the voice of the Lord came into my mind again. तुम इन चीज़ों को जान सकते हो. प्रार्थना करो कि तुम उस प्रेरणा को पाओगे और हमेशा उसके पाने के लिए लायक रहोगे. उसको हमेशा खुला रखो इस दुनिया की मुसीबतों से. एल्डर गैरम डब्ल्यू डॉक्सी जो एक बार कोरम सेंट्री में सेवा कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक अनुभव के बारे में बताया. उनकी माँ जो जनरल प्राइमरी रेजिडेंसी में एक माँ थी, उन्होंने भी मुझे इस अनुभव के बारे में बताया. वर्ल्ड वॉर टू के समय में वो चाइना में नेवी में काम कर रहे थे. वो और कई और को टाइनसिटीन नाम के शहर में रेल के द्वारा भेजा गया। जब वो ट्रेन पे चढ़े बेस पे लौटने के लिए, उन्होंने जाना कि वो गलत ट्रेन पे थे। वो कोई चाइनीज नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने इमरजेंसी कॉर्ड को खींचा और ट्रेन को रोका, और फिर वो उस देश में थे पर उनके पास में कोई इलाका नहीं चाह नहीं था कि वो सिर्फ घर पैदल चल के आए। कुछ समय के बाद उन्होंने छोटी सी पंप हैंडल कार पाई जिस जो रेल रोड वर्कर इस्तेमाल करते हैं, और उसे फिर उन्होंने पहाड़ के ऊपर उसे ले जाना था। जैसे वो उसे ऊपर पहाड़ के ऊपर ले जाने गए, ग्राहम के पास में सिर्फ एक ही जगह थी उस पर बैठने के लिए, वो उसकी कार के आगे की तरफ था। जैसे कार आगे स्फूर्ति से बढ़ते गए, उसने अपनी माँ की आवाज को सुना, बट अपना तुम ध्यान रखो। उनके पास में मिलिट्री जूते थे, जैसे उनका जूता फिसल के फिसला, वो पहिए में अटक गया। वो ईस्ट सेंट्रल स्टेट मिशन के एक होटल रूम में उनके माता पिता थे। माँ 2 बजे रात में उठी और अपने पिता को कहा कि बड मुसीबत में है, और फिर उन दोनों ने प्रार्थना करी। उसके बाद में उन्होंने वो एक खत मिला कि बड, क्या गलत हुआ, तुम्हें क्या हुआ। फिर उन्होंने उसे जवाब दिया कि क्या हुआ था। जब उन्होंने एक दूसरे की कहानियों को बताया, तब उन्होंने जाना कि जैसे वो उनका जूता और पहिए में अटका हुआ था, उसके पिता उस होटल रूम में अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहे थे। ये अनुभव गिरजे में काफ़ी चर्चा समय होते हैं। ये उस स्वर्गीय चीज़ पिता ने जिस चीज़ के बताया था, जिससे हमें पवित्र आत्मा हमें निर्देशन देते हैं। तो चाहे तुम कहाँ पर भी हो, तुमने क्या भी किया हो, तुम्हें हमेशा प्रार्थना करनी है। प्रॉफिट जोसेफ ने वादा किया है जिनके पास में भी शक्ति है प्रार्थना करने के लिए, उन्हें मदद मिलेगी। जब प्रलोभन आता है तो तुम्हें अपने दिल में एक अच्छे शब्द को लाना है। तुम्हारा दिमाग संतुलित है, तुम्हारे शरीर तुम्हारे दिमाग का की बात सुनेगा। जैसे तुम इस चीज़ों को दिल में से निकालोगे तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। ऑलिवर कार्डरी को जब ट्रांसलेशन में मुसीबत मिली, तो भगवान ने उनसे किया, बिहोल्ड यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू आर सपोज दैट आई वुड गिव अनटू यू व्हेन यू टुक नो थॉट सेव इट इट वाज टू मी। पर तुम्हें उसको खुद अपने दिल में पढ़ना है, और अगर तुम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो ठीक है। पर अगर वो सही नहीं है तो तुम्हें ऐसे अनुभव नहीं मिलेंगे। इस अनुभव को एक छोटी लड़की की कहानी में भी बताया जा सकता था। वो अपने भाई से गुस्सा थी जिसने चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक पिंजरे को बनाया। तो उसने लड़की ने भगवान से प्रार्थना करे, और उसने प्रार्थना करने के बाद में उसने माँ से क्या है कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, वो किसी भी चिड़िया को नहीं पाएगा। माँ ने पूछा कि तुम कितने से पक्की हो, उसने बोला मैंने प्रार्थना करने के बाद में उस पिंजरे को तोड़ दिया। चाहे तुम प्रॉफिट एल्मा की तरह बंद दिमाग के हो या एमिला की तरह हो, जानते थे हर चीज़ के बारे में, हमेशा प्रार्थना करो हर समय, और वो तुम्हारी खुद की चाबी है स्वर्ग के लिए। और मैंने जाना है कि मैं सारी प्रार्थनाओं का अंत इस तरह से करूँगा कि भगवान की इच्छा होगी, चाहे वो जो भी हो। क्योंकि इन चीज़ों को हमें इस धरती पर भेजा गया ताकि हम सीखें. किसी ने लिखा है हमारे हाथ जिनमें और दिमाग अगर हम बिना विचार से काम करें तो हमें सिर्फ दर्द मिलेगा. स्क्रिप्चर हमें वादा देते हैं There had no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you be tempted above that you are able, but you will be with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to hear it. मसीह ने कहा है कि अपने आप को मेरे पास में लाओ और मैं तुम्हारे पास में आऊँगा. मुझे मांगो और मैं तुम्हें मुझे अपने आप को ढूंढने दूंगा और फिर ठकाओ और फिर वो तुम्हारे लिए खुले हो गया. हमने इस सेशंस को अथॉरिटीज को सस्टेनिंग के लिए शुरू कराया. प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन को सबसे पहले सस्टेन किया गया. मैं प्रेसिडेंट मॉन्सन को किसी और आदमी से जितना अच्छा जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि प्रोफेसी के द्वारा उन्हें बुलावा मिला है और वो हमारे प्रार्थना की ज़रूरत है उस बड़े काम के लिए जिन्हें उन्हें पूरा करना है.
That he was called of God by prophecy.
और गिरजे के सदस्य को ये पता है लोग दूसरों को पता होगा जो भगवान की इच्छा के द्वारा उन्होंने ये बुलावा मिला है. भगवान हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उससे सस्टेन कर सकें और उनके परिवार में भी ताकि वो अपना काम करते रहें. मैं बयान देता हूँ और मैं आशीर्वाद की पाने की इच्छा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में. आमीन.
Holy, eternal, and beloved Father.
पवित्र अनंत और प्यारे पिता, जैसे हम इस दूसरे सेशन का के अंत में हैं, हम कुछ इसे कहते हैं कि हम अपोस्टलों के चरणों पे इकट्ठा हुए हैं और हमने सत्यों को पाया है और आपके बयानों को भी, और हम गिरजे के विस्थापीकरण से खुश हैं और ये जानकर कि हमारा रिडीमर जीता है.
Seek after thee and thy ways, the only true and living God.
और हम तरीकों को ढूंढ सकें ताकि हम भगवान को पा सकें और उन उस तरीके को रास्ते और पर चल सकें जिससे हम मसीह को अपने जीवन में लाएं, ताकि हम आपके हमारे कमजोरियों को हम सुधार सकें और हमें नम्रता मिले और हमें जीवन में प्यार मिले और इस जीवन को हम जिस जीते हैं और ताकि हम आपके और आपके बेटे से गले मिल सकें प्यार भले जैसे हम इस कॉन्फ्रेंस को जीते हैं और उन भाइयों को इस सेशन ने पिछले सेशन वापस आएंगे उनको भी आपसे रक्षण मिल सके और इन सब से हम कहते हैं हम अपने वादों को वापस कर सके हैं और इन सब का हम यीशु मसीह के नाम में निवेदन करते हैं. आमीन.
This has been a broadcast.
Yeah, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 179th Semi-Annual General Conference ka prasaran tha. Vyakti ko girje ke general authorities aur general office room mein se chuna gaya. Sangeet ko Bountiful aur Farmington ke combined stake ne pradan kiya. Is broadcast ko Bonneville Communication dwara ek samajik seva ke roop mein pradan kiya rajaha hai. बिना इजाजत के इसको रिकॉर्ड या छापना बना है.